ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। हाल ही में जारी किए गए अध्यादेशों को संघीय संसद से यथाशीघ्र अनुमोदित करने की सरकार में सहभागी दलों के शीर्ष नेताओं के बीच हुई सहमति। पोखरा भ्रमण वर्ष के उद्घाटन के क्रम में अचानक आग लगने की घटना में घायल हुए उप प्रधानमंत्री विष्णु पौड़ेल और पोखरा महानगर के प्रमुख धनराज आचार्य का कीर्तिपूर्ण बर्न अस्पताल में चल रहा है इलाज। बांके में 26 बीघा से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित होल्डिंग सेंटर स्वामित्व हस्तांतरण न होने के कारण है प्रयोग विहीन। और हमास ने आज अन्य 3 इसराइली बंधकों को किया रिहा, बदले में इसराइल ने भी रिहा किए कुछ बंधक। अब समाचार विस्तार से। सरकार में सहभागी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं की आज की बैठक में हाल ही में जारी किए गए अध्यादेशों को संसद के दोनों सदनों से यथाशीघ्र अनुमोदित करने की सहमति हुई है। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुई बैठक में जल्द से जल्द अध्यादेशों को पारित कराने की सहमति हुई है। ये बात बैठक के बाद गृहमंत्री रमेश लेखक ने बताई। उन्होंने बताया कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के नेताओं के साथ भी सहमति हो गई है। बैठक में प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा, एमाले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, कांग्रेस उपसभापति पूर्ण बहादुर खड़का, जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अशोक राय, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महंत ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी की अध्यक्ष रंजिता श्रेष्ठ और जनमत पार्टी के उपाध्यक्ष अब्दुल खान लगायत सहभागी थे। पोखरा भ्रमण वर्ष 2025 के उद्घाटन के दौरान आग की लपट के कारण बैलून फूटने से घायल हुए उप प्रधान तथा अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल और पोखरा महानगर के प्रमुख धनराज आचार्य का काठमांडू के कीर्तिपुर स्थित बर्न अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों को पोखरा में प्राथमिक उपचार के बाद कीर्तिपुर स्थित बर्न अस्पताल में लाया गया है। बर्न अस्पताल के निर्देशक डॉ किरण नकर्मी ने कहा कि दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया है और अभी इलाज चल रहा है। बता दें कि मंत्री पौड़ेल की हथेली और चेहरा जला हुआ है, यद्यपि अवस्था जोखिम मुक्त है। ये जानकारी अर्थमंत्री पौड़ेल के प्रेस सलाहकार भुवन केसी ने दी। संविधान संशोधन करने के विषय में प्रमुख राजनीतिक दलों के नेतागण एकमत दिख रहे हैं। आज ललितपुर में आयोजित संविधान संशोधन में सार्वजनिक संवाद कार्यक्रम के दौरान ये बात आज फिर सामने आई। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के नेता डॉ मिनेन्द्र रिजाल, नेकपा एमाले के नेता रघुजी पंत, पूर्व संचार मंत्री रेखा शर्मा और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख सचेतक संतोष परियार लगायत ने संविधान संशोधन करने को जरूरी बताया। वैदेशिक रोजगारी में आकर्षक तलब का प्रलोभन देकर ब्रिटेन, कनाडा, अजरबैजान और मॉरिशस जैसे देशों में ले जाने के झांसा देकर ठगने के अभियोग में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। धादिंग के त्रिपुरा सुंदरी गांव पालिका वार्ड नंबर 3 के दिनेश अधिकारी ने एक युवक को ब्रिटेन में भेज देने का प्रलोभन देकर 32,57,000 रूपये ठगने के शिकायत होने के बाद अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है, ये बात पुलिस ने बताई। इसी तरह सिंधुपाल चौक की 12 बिसे नगर पालिका वार्ड नंबर 7 के 41 वर्षीय गणेश बहादुर थापा और कापड़े प्लान चौक नवबुद्ध नगर पालिका वार्ड नंबर 4 काफले चौक के 39 वर्षीय दिनेश प्रसाद अधिकारी ने कनाडा, अजरबैजान और मॉरिशस भेजने को झांसा देकर 14 पीड़ितों से 71,70,000 रूपये ठगने से शिकायत होने के बाद उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, यह जानकारी पुलिस ने दी। बागलुंग की निसीखोला गांव पालिका वार्ड नंबर 6 सिवाद्वार क्षेत्र में कल लगी आग आज नियंत्रण में आ गई है। कल से लगे आग आज शाम को नियंत्रण में आई है, ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय बागलुंग के सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक सुनील शर्मा चिलुआ ने दी। बता दें कि सिवाद्वार शिप तिग्रा पानी कोसंका सुन क्षेत्र के सामुदायिक वन में कल से आग लगा हुआ था। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। मैथिली विकास कोष के 7 करोड़ रुपए से अधिक के लागत में भवन का निर्माण संपन्न हुआ था। जनकपुर धाम के वार्ड नंबर 8 में मध्य प्रदेश सरकार के 7 करोड़ से अधिक के लगानी में 4 मंजिला आकर्षक एवं अत्याधुनिक भवन निर्माण होने के साथ भवन के अंदर मिथिला के कला संस्कृति साहित्य सहित के संग्रहालय का निर्माण हो रहा है। ये जानकारी कोष के अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी ने दी। संघीयता के क्रियान्वयन में आने के बाद स्थानीयतः सबल होने से विकास के कार्यक्रम गांव केंद्रित होने के बावजूद म्यागदी के गांव खाली होते जा रहा है। सड़क संचार शिक्षा और स्वास्थ्य की पहुंच के साथ ही विकास के कार्यक्रम गांव केंद्रित होने के बावजूद लोग गांव छोड़कर बाहर जा रहे हैं। सालों से ओझल बन रहे म्यागदी के गांव बस्तियों में वार्ड कार्यालयों के साथ ही स्वास्थ्य चौकी विद्यालय घरों के पास से ही मोटर गुजरने वाले रास्ते पेयजल सिंचाई बिजली लगायत सारी सुविधाएं गांव में ही मौजूद होने के बाद भी लोगों के शहरों और मधेश में स्थानांतरित होने वालों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। ये जानकारी हमारे संवाददाता ने दी। बांके में 26 बीघा से अधिक के क्षेत्रफल में निर्माण किए गए होल्डिंग सेंटर स्वामित्व हस्तांतरण न होने से प्रयोग विहीन बना हुआ है। कोरोना महामारी में नेपालगंज उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 14 स्थित नेपाली सेना के समन्वय में निर्माण किए गए होल्डिंग सेंटर अभी प्रयोग विहीन बना हुआ है। दांग के घोराही उपमहानगरपालिका के सहयोग में 6 नंबर वार्ड कार्यालय ने वार्ड के प्रत्येक गांव को समेटने के हिसाब से बोरिंग और सियालों ट्यूबवेल निर्माण करने के बाद वहां के खेतों में हरियाली छाया हुआ है। पानी के सुविधा होने के बाद तोरी मकई और तरकारी का खेती करके 12 महीनों तक खेतबारी हरा भरा होने से नागरिकों का आमदनी में भी वृद्धि हुआ है। ये जानकारी घोराही वार्ड नंबर 6 के श्रीधर अधिकारी ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल हमास युद्ध विराम समझौते पर आशंकाओं के बीच इसराइल ने कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। इससे थोड़ी देर पहले हमास ने भी 3 बंधकों को छोड़ा था। आज रिहा किए गए बंधकों को लेकर रेडक्रॉस की एक बस रामल्लाह पहुंची है। रामल्लाह पर कई कैदियों के परिजन और आम लोग मौजूद हैं। इस दौरान लोग एक दूसरे को गले लगाते हुए जश्न मनाते हुए नजर आए। हमास ने कुछ देर पहले ही अलेक्जेंडर ट्रोफानोव यरहार्न और शागुई डेकेल चेन को छोड़ा है। हाल ही में हमास ने इसराइल पर युद्ध विराम समझौते की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा था कि वह बंधकों को रिहाई को रोक रहा है। हमास के बयान पर इसराइल ने कहा था कि ये युद्ध विराम समझौते का पूर्ण उल्लंघन है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हाल ही में जारी किए गए अध्यादेशों को संघीय संसद से यथाशीघ्र अनुमोदित करने की सरकार में सहभागी दलों के शीर्ष नेताओं के बीच हुई सहमति। पोखरा भ्रमण वर्ष के उद्घाटन के क्रम में अचानक आग लगने की घटना में घायल हुए उप प्रधानमंत्री विष्णु पौड़ेल और पोखरा महानगर के प्रमुख धनराज आचार्य का कीर्तिपुर बर्न अस्पताल में चल रहा है इलाज। बांके में 26 बीघा से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित होल्डिंग सेंटर स्वामित्व तो हस्तांतरण न होने के कारण है प्रयोग विहीन। और हमास ने आज अन्य तीन इसराइली बंधकों को किया रिहा, बदले में इसराइल ने भी रिहा किए कुछ बंधक। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।